بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا آج یوم ولادت باسعادت ہے، اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بحرین میں عوام کی انقلابی تحریک اور بحرین میں بین الاقوامی سیکورٹی کانفرنس. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جناب ناظرین، آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا کہ گزشتہ جمعے کو بحرین کے دارالحکومت مناما کے ایک شاندار ہوٹل میں بین الاقوامی سیکورٹی کانفرنس، جو کہ نویں بین الاقوامی سیکورٹی کانفرنس تھی مناما میں، وہ شروع ہوئی. اس کانفرنس میں دنیا کے 50 ملکوں کے وزرائے خارجہ، دفاع اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی. اس کانفرنس کا عنوان تھا سیکورٹی کانفرنس، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مناما میں سیکورٹی سے متعلق یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہوئی یا ہو رہی تھی جب خود مناما کے شہریوں اور عوام کو سیکورٹی نام کی کوئی چیز بھی حاصل نہیں. ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں درانہ گھس کر انہیں زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور انہیں فائرنگ کر کے شہید اور قتل عام کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی سیکورٹی کانفرنس کیا پیغام دیتی ہے مناما کے عوام کو اور بیرونی دنیا کو؟ ساتھ ہی مناما میں ہی مخالف جو گروہ ہیں حکومت کے، ان جو جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی ایک کانفرنس منعقد کی جمہوریت کے عنوان سے، اور انہوں نے واضح لفظوں میں اس بات کا اعلان کیا کہ بحرین کے بحران کا واحد حل جمہوریت ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بحرین میں سیکورٹی کی عالمی کانفرنس اور خود بحرینی عوام اور شہریوں کو سیکورٹی سے بالکل دور رکھا جا رہا ہے، یعنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی ہاں، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی. اب سیدھے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر مقصود صدیقی. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
صدیقی صاحب، بس ایک سوال مختصر، اس کے بعد اگلا سوال کچھ تفصیلی کروں گا یہاں پر، کہ ایک ایسے ملک میں سیکورٹی سے متعلق عالمی کانفرنس ہو رہی ہے جہاں کے شہریوں کو سیکورٹی نام کی معمولی سی بھی چیز میسر یا مہیا نہیں، کیا پیغام ہے ایسی کانفرنس کا؟
جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ تو بہت ہی مضحکہ خیز، جسے کہتے ہیں نا، کامیڈی ڈرامہ ہو رہا ہے وہاں کے اوپر، اور یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ اب دنیا میں لوگوں کو ایسا ایسا اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ جس چیز کی جو سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، وہ دراصل بات سیکیورٹی کی یہ ہے کہ اب یہ جو غیر قانونی طور پہ حکمراں، جو پیسے والے لوگ، یا جو قبیلے کے جو سردار، یہ جو ڈکٹیٹرشپ جنہوں نے قائم کی ہوئی ہے، جو گلف سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممالک ہیں ان میں اور دوسری جگہوں میں، اور ان کے جو ہیں وہ دن تقریباً پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کو کس طرح سے سیکورٹی دی جائے. مطلب یہ کہ ان کا جو یہ جو غیر قانونی جو 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 جیسا جو انہوں نے اپنا قبضہ کر رکھا ہے، اس کو کب تک جو ہے یعنی کتنے دنوں تک اور چل سکتا ہے، یا اس کو کیسے برقرار رکھا جائے. بات تو ساری ہے. دیکھیے، آپ نے جیسا فرمایا کہ بحرین میں 2.5-3 سال ہو گئے میرے حساب سے کہ یہ جو احتجاج، جو پرامن احتجاج عوام کا، وہ کس شدت سے دبایا جا رہا ہے، اور روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کہ نہتے لوگوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ، اور گاؤں میں رات میں جا کے ان کو حملہ کرنا، عورتوں بچوں کو نکالنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ سب جاری ہے. اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو انہیں چک ہیگل صاحب کو اور ہیگ صاحب کو، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ وہ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے جہاں پہ سیکیورٹی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں کے عوام جو ہیں مکمل طور پہ سیکیورٹی سے محروم ہیں، جہاں کی جو 70% جو آبادی ہے اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، اور جہاں کے اوپر انگریزوں کے بٹھائے ہوئے پٹھو اور جو ہیں وہ 20-15-20% جو لوگ ہیں وہ پورے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ تو یہ اب اس میں دیکھیں، ایک اور چیز دیکھنے والی ہے، مختصر سے میں عرض کروں گا کہ جو جی سی سی میں جو تمام ممالک ہیں، اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو مسقط جو ہیں عمان، وہ لوگوں کو اب ذرا سا ان کے جو پروگرام ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ساتھ دیں گے وہ. और उन्होंने ये भी जो एक गल्फ की एक जो फौज बनाने का, जो डिफेंस फोर्स बनाने का जो प्रोग्राम बनाया था, उसमें भी वो शमूलियत से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो मकसद कहना का ये है कि यह सारा जो खेल है सब इसलिए है कि उनको ये फिक्र हो गई है, जो जैसा भी हमने रिपोर्ट में भी सुना, कि ईरान से बेशक से एक बहुत ही एक छोटा सा मुआहदा हुआ है और 6 महीने का है एटमी मुआहदा, उनको ये फिक्र है कि अमेरिका के ताल्लुकात ईरान से बेहतर होंगे तो उसका असर इन लोगों पे क्या पड़ेगा, जबकि उन्होंने हर तरह से अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका के कहने पर चले हैं। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट, जो कि बहुत ही बड़ी फ्लीट है, उसका वहाँ पे अड्डा है, तो और वो अमेरिका के हालांकि है वो पूरा पूरी तौर पे जिसे कहना चाहिए यकीन दहानी कराई है खलीफा फैमिली की कि वो उनको गद्दी पर बरकरार रखेंगे, और उसके लिए जाहिर उन्होंने इतनी बड़ी फौज वहाँ पर रखी हुई है। लेकिन वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है मेरे हिसाब से कि आवाम का जोर इतना उन पर पड़ेगा कि सब पहले तो ये कि जो सऊदी फौज हैं या सऊदी फौजों, अब तो फौज तो वैसे नहीं है बजात खुद, लेकिन सऊदी जो आर्मी के जो जो वहाँ पे लोग हैं जिन्होंने अब बहरीनी लिबास पहन के, बहरीनी यूनिफॉर्म पहन के उन लोगों के बहरीनी फौजों के साथ
नहीं,
मिल
सऊदी
के
फौज भी
वो
मौजूद
जो
है
जो जो
जी।
ज्यादती हो रही है उसमें जी, और उसमें उनका जो है उनके साथ मिल के वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो सऊदी फौजें चली गई हैं नहीं जाहिर तौर पे, लेकिन उनके फौजी वहाँ पे अभी तक मौजूद हैं,
जी
उन्होंने
बहुत
यूनिफॉर्म अपने बदल लिए हैं। तो जी
जी, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में।
तो
चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं सियासी उमूर के माहिर मोहतरमा फौजिया शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मोहतरमा, आज की दुनिया में जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दो मकूले एक साथ चलते हैं, सिक्योरिटी और जमहूरियत। जहाँ जमहूरियत है वहाँ सिक्योरिटी, और जहाँ सिक्योरिटी वहाँ जमहूरियत, इन दोनों को साथ साथ लेके चला जाता है। बहरीन जैसे मुल्क में जहाँ अमीरियत है, जहाँ बादशाहत है, जहाँ पे मुलुकियत है, वहाँ पर ये 9वीं आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी और 2.5 साल से ज़्यादा अरसे से वहाँ जमहूरियत की तहरीक चल रही है। सिक्योरिटी की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है और उस पूरी कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत के हक़ में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया, इसका क्या मतलब हो सकता है?
बहुत शुक्रिया। और देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि हम जब जब बात कर रहे हैं तो हमें बहरीन के उस आवाम को मुबारकबाद देना चाहिए जो तसलसल से जो है वो एक आज़ादी के लिए या जमहूरी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको मालूम होगा जब जद्दोजहद का आगाज़ हुआ, और मैं ये समझती हूँ कि मशरक़ वुस्ता की ओवरऑल जो मजमू सूरत हाल है उस पे बहरीन की जो स्ट्रगल है जो 2010 में शुरू हुई थी
11 में
उसका बहुत अहम किरदार है। उस जदोजहद के नतीजे पे हमने देखा कि त्यूनिस या दीगर हम उसमें एक आज़ादी की जो तहरीक कहना चाहिए या शख्सी आज़ादी या उसको ये कह लीजिए कि किसी भी तरह की जमहूरी आज़ादी के हवाले से पहली दफ़ा ये एक बातें की जाने लगी और लोगों ने उसको एक जानने की कोशिश की। इस हवाले से मैं समझती हूँ कि बहरीन के आवाम जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो अपनी जदोजहद वो जदोजहद जारी रखे हुए हैं। गो उसमें कुछ जब ये एक पल राउंड अबाउट में जो एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें बहुत मैं समझती हूँ कि आवाम के साथ अपनी ही हुकूमत उसी की हुकूमत ने जो जुल्म किया था और जिस तरह उनको हटाने के लिए वहाँ कुछ एक पूरी फोर्स इस्तेमाल की गई थी, इसके बावजूद हम ये फिर देखते हैं कि 2013 में वो जो मज़ारे हैं या जो भी एक जद्दोजहद है वो अपनी बहुत अरूज पे पहुंच चुकी है। और इसमें अवामिल जो है क्या है ये मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले भी हम देख चुके हैं कि उन्होंने एक जब इंक्वायरी करवाई एक उसमें इंडिपेंडेंट एक बहुत से ममालिक के लोगों को लेते हुए जिसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा था कि उनकी जो अपराइजिंग है इसकी बहरीन की उसके पीछे ईरान का हाथ है। जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें वाज़े तौर पे डिनाई कर दिया गया कि ईरान का हाथ नहीं है। हाँ, उस रिपोर्ट में एक बहुत अहम बात है और वो रिपोर्ट वाज़े करती है कि वहाँ के अवाम पे जुल्म हुआ, वहाँ जो उन्होंने गिरफ़्तार जो लोग किए उन पे जिस्मानी नफ्सियाती तौर पे जो है तशद्दुद किया गया, ये एक वाज़े तौर पे सामने रिपोर्ट आई। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोग अपनी एक आज़ादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, एक तो ज़ाहिर है हम बिल्कुल समझते हैं, और मैं चूंकि थोड़ी सी बाज़ औक़ात हो सकता है कि मैं बाइस भी हो जाती हूँ उन ममालिक के बारे में कि जो ऐसी कुव्वतों को सपोर्ट करते हैं, चाहे मैं अमेरिका की बात करूँ, चाहे मैं सऊदी अरब की बात करूँ, जो भी ऐसी जहाँ भी अवाम के ख़िलाफ़ जो हुकूमत होती है वहाँ वो सपोर्ट सिर्फ इसलिए करते हैं अपने मफादात की। अभी बात कर रहे थे फिफ्थ फ्लीट की, अब वहाँ इतना बड़ा जो बहरी बेड़ा वहाँ उनके वहाँ मौजूद है, उस पे जो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी फोर्स होती है, कोई बहरी बेड़ा से मतलब ये नहीं होता कि कोई एक जहाज़ खड़ा है, वो पूरे इलाके को जो है वो मॉनिटर करते हैं, पूरे इलाके पे वो नज़र रखते हैं, उसकी वहाँ मौजूदगी जो है तमाम इलाके के ममालिक के लिए ख़तरे का बायस होता है। अब इसमें मैं बिल्कुल इत्तफाक़ करती हूँ जो अभी आपकी रिपोर्ट इसमें की गई कि अभी जो थोड़े से कुछ अरसे के लिए 6 माह की एक मुख्तसर मुद्दत के लिए हम ये देखते हैं कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें या ईरान और यूरोपीय ममालिक के ताल्लुकात की बात करें, हम इसमें ये बिल्कुल नहीं समझ रहे कि मकम्मल तौर पे कोई बहुत स्मूथ बात हो गई, लेकिन एक हल्की सी जो बर्फ़ पिघली है अब उन ममालिक को इससे खदशा ज़रूर महसूस होता है क्योंकि वहाँ जमहूरियत और जमहूरी तकाज़े नहीं हैं। बेशक वहाँ पार्लियामेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो आपको भी मालूम है कि वो पार्लियामेंट्स किस तरह वजूद में आती हैं, उन पे कौन काबिज़ रहता है और किस तरह वो आवाम की नुमाइंदगी होती है या नहीं होती। बहरीन को ही अगर हम देख लें, वहाँ भी पार्लियामेंट बज़ाहिर मौजूद है, लेकिन वहाँ उस मुल्क की बड़ी आबादी जो है, जो ये कहा जाता है, फिर इसमें बड़ी मैं ज़ाती तौर पे तो बहुत से जो सेक्टेरियन किस्म की बातें होती हैं उसकी ज़्यादा कायल नहीं होती, मैं आवाम की बात करती हूँ कि कोई भी शख्स जो जिस मुल्क का शहरी है उसको आज़ादी के साथ तमाम अपने जो अकायद हैं उस पर अमल दरामद की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन बहरीन में वाज तौर पर मैं समझती हूँ और उसकी पुश्तपनाई में अगर सऊदीया की बात की जाए तो गलत नहीं है, वहाँ आवाम की अपराइजिंग को कॉन्शियसली सेक्ट में बदला जा रहा है। उसमें एक ये कहा जा रहा है कि जो जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि ईरान की पुश्तपनाई की बात की जाती है, या उसमें एक वाज तौर पर यह पैगाम दिया जा रहा है कि ये एक सेक्ट है जो इस पे मुल्क में किसी ना किसी तरह बेचैनी पैदा करने के लिए जो है असरअंदाज हो रहा है। अब ये आपने जो कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, मैं कॉन्फ्रेंस के कुछ थोड़ा सा इसके हवाले से जानने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे एक बिल्कुल समझ में नहीं आता, और ख़ास तौर पे जमहूरियत के हवाले से जब बात की जाती है तो तकरीबन तमाम हम ये देखते हैं कि ये चाहे GCC ममालिक को देखें या दूसरे हम दीगर ममालिक भी इस खत्ते के देखते हैं, मशरक वस्ता के ममालिक देखते हैं, चंद एक को छोड़ के तकरीबन सब में ये एक सूरत हाल सामने आती है कि जमहूरियत का लफ्ज़ उनको किसी तरह भी डाइजेस्ट नहीं होता, और वो आवाम की जो तरक्की है, आवाम की जो बहबूद है, आवाम के जो हकूक़ हैं उससे हट के, आपको याद होगा कि ईरान का क्या मसला हुआ था, ईरान का मसला इन ममालिक के साथ उस वक्त शिद्दत कर गया कि जब ईरान में खमेनाई साहब ने जब वाज़े तौर पे किया कि उसको जो शहनशाहियत कह लीजिए, बादशाहत कह लीजिए, उसको इस्लाम के मुनाफी उन्होंने करार दिया था, और उसके बाद से जाहिर है कि यहाँ शहनशाहियत जो है उन्होंने इस तरह अपने पंजे गाड़े हुए हैं, तो उन्होंने ईरान को हमेशा टारगेट करते हुए, क्योंकि ईरान ने जमहूरियत की बात की थी, अवाम की हुक्मरानी की बात की थी, इंतखाबात की बात की थी, अवाम की ताकत की बात की थी, तो उन्होंने अवाम ईरान को एक अलहदा करते हुए बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ एक महाजा बना लिया। और हमने ये देखा, ये महाज जो अभी की बात नहीं है, ये पिछली कई दहाइयों से 79 में उस वक्त जब इमाम खमीनी आए थे उसके बाद से हम ये देखते हैं कि इन ममालिक को ईरान के करीब होने की बजाय, क्योंकि ईरान में एक इस्लामी ममलकत जो आई थी, इस्लाम की बात कर रही थी, लेकिन हमने ये देखा कि जब वहाँ इस्लामी ममलकत आई तो ये बहुत दूर हो गए और उन्होंने ईरान को टारगेट करना शुरू कर दिया, और ख़दशा सिर्फ उन्होंने हमेशा ये महसूस किया कि ईरान और जो अवामी ताकत की बुनियाद पे हुकूमत कर रहा है वो मजबूत होगा तो हमारे लिए खदशात का बायस होगा, और हमारे
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपके
अवाम में अपराइजिंग आएगी ये शहनशाहियत के ख़िलाफ़। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है आपके मशरक़ वस्ती की सियासत में है, और वो टर्निंग पॉइंट जो है, चाहे हम शाम की सूरत हाल को देखते हैं, चाहे हम ज़ाहिर है पहले हमने लीबिया की सूरत हाल को भी देखा, चाहे इसके बाद हम मिस्र की सूरत हाल देखते हैं, ये तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं वहाँ क्या चीज़ है कि जो चंद ममालिक को तकलीफ़ दे रही है, اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ امریکہ ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں.
پہنچ رہی ہے
جی, بہت شکریہ. جناب صدیقی صاحب, آپ دیکھیں کہ جو خلیج فارس کے عرب ممالک ہیں یا حکومتیں ہیں, ظاہر ان کے یہاں سے تو جمہوریت اور ڈیموکریسی کا لفظ دور سے چھو کے بھی نہیں گزرا ہے, لیکن اس کانفرنس میں جن ملکوں نے شرکت کی تھی وہ تو خود کو جمہوریت کا چیمپئن سمجھتے ہیں, امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک. انہوں نے اس کانفرنس میں جمہوریت کا نام کیوں نہیں لیا؟
یہی تو میں نے کہا کہ یہ مجھے تو یہ ایک کامیڈی ڈرامہ لگتا ہے, کیونکہ اب یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہیں دنیا کے وہ بالکل ان کو کچھ تمیز نہیں ہے یہ دیکھنے کی, کہ خود تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے ملکوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوریت ہے اور لبرل ڈیموکریسیز ہیں, لیکن یہ کہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جب یہ جو ان کے پٹھو ان کے بٹھائے ہوئے یہ جو ڈکٹیٹرز جو ان الیکٹڈ لیڈرز جس کو کہتے ہیں, جب تک وہ وہاں پہ رہیں گے تو ان کی مرضی چلتی رہے گی, جب صحیح طرح کی ڈیموکریسی آ جائے گی اور لوگوں کے اپنے خود سے چنے ہوئے لیڈرز وہاں پہ آئیں گے تو وہ پھر ضروری نہیں ہے کہ ان کی باتیں سنیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے جب مصر میں احتجاج شروع ہوا تھا حسنی مبارک کے خلاف, تو اوباما نے اس وقت کہا تھا کہ حسنی مبارک کو ہٹ جانا چاہیے, تو خلیفہ صاحب نے ان بحرین کے لیڈروں نے بڑی بڑا غم و غصے کا اظہار کیا تھا, کیونکہ تیس سال تک وہ امریکہ کا یعنی حسنی مبارک امریکہ کے کہنے پہ چلتا رہا اور ان کا غلام بنا رہا, اور اس کے بعد یہ کہ اس کو ہٹانا, تو ان کو یہ فکر ہو گئی تھی اس وقت کہ کیا حسنی مبارک کے خلاف یہ بات کہہ رہا اوباما, تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا نمبر ان میں سے کسی کا ہو, تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جہاں تک یہ جمہوریت کی بات ہے تو یہ دیکھیے جمہوریت والا جو ساری جو ہے مغرب کے لیے یا ڈکٹیٹرشپ یا کچھ وہ اس وقت تک ان کے جس میں ان کا مفاد ہے جس میں ان کا فائدہ ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. جیسا بھی آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے سنا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈکٹیٹرز کو رکھنے کا, کہ اس کی وجہ سے بلینز آف ڈالرز کے جو اسلحے آرمز امیونیشن وغیرہ, ابھی آپ دیکھیے کہ بحرین کو کتنا کتنا اسلحہ اور کتنے ہوائی جہاز اور یعنی اور قسم کے سب ابھی انہوں نے سپلائی کی, ان کی جو مغرب کی جو آرمامنٹ انڈسٹری ہے وہ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں اور وہ سب زیادہ تر ہتھیار بنا کے یہ سعودی عرب اور یہ جو جی سی سی ممالک ان میں جا رہے ہیں, ان کو کس کا خطرہ ہے؟ ان کو کیا ایران کا خطرہ ہے کہ ایران سب پہ حملہ کرے گا جو انہوں نے اتنے اتنے ہتھیار لے کے رکھے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ کہ اس کا تو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی یہ بےغیرتی سے یہ لوگ اس طرح کی آ کے وہاں پہ باتیں کرتے ہیں کانفرنسز میں, جبکہ سب سے پہلا سوال ان کو یہ کرنا چاہیے بحرین میں آ کے کہ تم اپنے عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو اور تم کو اس کو حق کیا ہے جو تم سے جو 70% عوام اور اس میں سب شیعہ اور سنی سب شامل ہیں کہ تم سے جو اپنے جو بیسک رائٹس مانگ رہے ہیں ہیومن رائٹس کو بالکل دیکھیے ہیومن رائٹس کی کتنی ہیومن رائٹس کا بھی اس میں ذکر ہے اس کانفرنس میں, یعنی یہ تو بہت ہی میں سے میں نے کہا سوائے ہنسنے کے یا رونے کے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کانفرنس کا مقصد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں مقصد صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کو یقین دہانی کرنا, یہ جو 6 ممالک ہیں, کہ آپ لوگ آپ کی جو گدیاں ہیں وہ سلامت رکھیں گے, ہم آپ ہمارے کہنے پہ چلتے رہیے اور ایران سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی آپ فکر نہیں کریں, اور ویسے بھی ایران سے جو معاہدہ ہوا ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ ابھی تو صرف 6 مہینے کا ہے اور اس کے بعد بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کیا جو مطلب جو ایٹمی اس کا جو کیا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز اس میں میں یہ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے جو ایران کا جو ایران کا جو ڈر ہے, اور وہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا وہ جو 3 جزیرے ہیں جس کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا, ابو موسیٰ اور 2 اور ہیں, تو وہ بھی ایک انہوں نے وہ بھی جھگڑا اٹھایا ہوا کہ ایران نے ان جزیروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو یہ سب اس قسم کی جو جس میں کچھ دم نہیں ہے ان چیزوں میں ان کو لے لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جیسا میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ آپس میں بھی یہ جو 6 ممالک ہیں ان میں ہر چیز کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہے, اور وہ خاص طور کے اوپر جو جس طرح سے سعودی عرب نے اور قطر نے जो ये जो शाम में जो हालात ख़राब हुए हैं उसमें जो उनकी बागियों की मदद की, उन्होंने सेकुलरिस्ट को की मदद की, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उसके साथ साथ जो जो अलकायदा के और गुस्म के लोग थे वो भी आ गए, और उससे उनकी एक तरह से उनको अपने उनके मुंह पे तमाचा लगा। अब उनको ये परेशानी हो रही है कि अलकायदा ने बागियों को में सबसे आगे हो गए हैं। तो मतलब हर चीज़ जिस चीज़ में उन्होंने हाथ डाला उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने सीरिया को तकरीबन ख़त्म करवा दिया है। अगर ये इस तरह से सऊदी अरब और कतर ये इसकी मदद नहीं करते बागियों की, तो आज सीरिया में ये हाल नहीं होता। लेकिन बहर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के हालात जो हैं अब बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जो फौजें हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता
बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकी
जो
साहब,
हैं
बहुत शुक्रिया
अब दोबारा से संभाल रहे हैं। जी
जी। फौजिया शाह साहबा, जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त पूरे बहरीन में मुजाहरे जारी थे जमहूरियत के हक़ में, आज़ादी के हक़ में और इंसानी हकूक़ के तहफ़ के हक़ में, और उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक़द हुई बहरीन की सियासी जमातों की, जिसमें इस बात का नारा लगाया गया कि बहरीन के बहरान का वाहिद हल जमहूरियत है। तो ये नारा क्या आप समझते हैं कि मौजूदा दौर के हिसाब से कोई अजीबोगरीब नारा था, और जो लोग या जो ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे उनके लिए क्या ये बहुत ही गैर मानूस नारा था जो इसके बारे में उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि जो बहरीन कॉन्फ्रेंस का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आपने वहाँ देखा कि बहुत से जो सवालात वहाँ उठे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यकीनन उसको हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन वहाँ जो मंदूबीन थे उनका एक कंसर्न ज़रूर था लीबिया के हवाले से। और बड़ी अजीब सी बात है कि जिस तरह भी आप पहले बात कर रहे थे कि उन मंदूबीन ने ऑन फ्लोर जो है कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी जो एक अलग-अलग कह लीजिए कि किसी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में वो इस चीज़ की बात करते रहे कि बहरीन की सूरत हाल क्या है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस कॉन्फ्रेंस के अलावा उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये GCC ममालिक की कन्फेडरेशन की बात हुई, तो आप ये देखिए कि वहाँ तमाम ममालिक जो हैं GCC के, उन्होंने उस कन्फेडरेशन की जो सऊदीया की तरफ से तजवीज़ आई थी उसकी शदीद मुखालफत की। मकसद से मेरा कहने का ये है कि इलाके के ममालिक जो हैं वो इस सूरत हाल से काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझते हैं कि वहाँ इस वक्त जो हुक्मरानी है वो एक जबर के ताकत पे है। और मैं समझती हूँ, मैं फिर वही बात कहूँगी क्योंकि मैं अवाम की जो ताकत है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अवाम की ताकत ने वहाँ, और बिल्कुल उस कॉन्फ्रेंस ने जो अपोजिशन जमातों के पर मुश्तमिल थी, उन्होंने वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया कि ये जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसका कोई ताल्लुक जो है अवाम से नहीं है। अवाम समझते हैं कि उन्हें शख्सी आज़ादी, उनको अपनी जो जमहूरी आज़ादी है वो उन्हें दरकार है, जमहूरियत की वो बात करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि एक बड़ी कुव्वत जो है, और ज़ाहिर है कि जब हम किसी भी कौम की या मुल्क की बात करते हैं तो जो जद्दोजहद होती है वो एक वक्त ज़रूर लेती है, लेकिन बहरीन में जो जद्दोजहद है उसका पैगाम मैं समझती हूँ कि उन ताकतों पर ज़रूर पहुँच गया है। और इसी बुनियाद पे हेगल जो है वो ख़ुद वहाँ एक पहुँचे हैं, और आके उन्होंने जो भी अपने फ्लीट पे भी दौरा किया है और जो पैगाम वहाँ दिया है, लेकिन उनको भी ये वाज़े तौर पे पैगाम मिल चुका है कि अवाम जो जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसका और कोई तोड़ नहीं हो सकता। खलीफा जिसमें सारे, अगर आप ये देखें तो तमाम के तमाम खलीफा जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे, चाहे वो फ़ौज के हेड के तौर पे देख लें, वजारत खारजा में देख लें, हर चीज़ में देख लें, वज़ीर आज़म देख लें, सदर देख लें, तो वो एक पूरा इस तरह जो है ख़ानदान वहाँ बैठा हुआ है। मकसद कहने का ये है कि वो ख़ानदान जो है वो एक थ्रेट ना सिर्फ बहरीन के लिए बन चुका है बल्कि इलाके के दीगर ममालिक के लिए भी बन चुका है। अभी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक आप ज़रूर ये शेयर करूँगी कि आजकल पाकिस्तान में जो एशियाई ममालिक हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। इत्तफाक है कि मेरी बहरीन का जो वहाँ वफद है उससे भी मुलाकात का मुख्तसर मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे ये इस हवाले से बात की कि वहाँ अपराइजिंग जो है उसकी बहरीन हुकूमत क्या उसका नतीजा समझती है, वो क्या हुकूमत इस अपराइजिंग को अहमियत देती है। लेकिन चूंकि वो ज़ाहिर है कि हुकूमत से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, तो उनका कहना था कि ये बहुत मामूली सी सतह पे अपराइजिंग है। खैर, इसके साथ साथ जो मुझे बहुत एक अहम चीज़ इसमें दिखाई दी कॉन्फ्रेंस में, मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको इस इलाके की सूरत हाल का इल्म हो। कि जब कल कुवैत के और कतर के जो तकरीर कर रहे थे तो वहाँ जो सीरिया का वफ़ था, उनकी जो ख़वातीन थी, उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किया, और उस पे उनके साथ जब मेरी सीरिया के वफ़ के साथ बात हुई तो सीरिया का कहना ये था कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो मगरबी कुवतें जिस तरह प्रोपोगंडा कर रही हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह ये कहा जा रहा है कि वो बेईमाना कोई आवाम को कत्ल कर रहे हैं, ये कतई जो है दुरुस्त नहीं है। जो वहाँ किस मिजरीज की अगर देखा जाए या किसी तरह की भी कोई खौफनाक हद तक ये कहा जाए कि कोई वहाँ लोग मारे गए हैं, तो वो शरह बहुत कम है, लेकिन मगरबी दुनिया उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एक सिर्फ शाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए ये चीज़ें कर रही हैं। ये मकसद सिर्फ मेरा इस बात को यहाँ कहने का ये है कि ये जज्बात जो हैं वो आम सतह पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये मशरक़ वुस्ता की जहाँ तक इस तकदीर का ताल्लुक है, मैं ये समझती हूँ कि अमरीका का साया वहाँ से मुझे काफ़ी हद तक कम दिखाई देता है, और आवाम की ताकत इसको पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएगी। अब सऊदी अरब जो है वो अब ज़्यादा वफादारी का एक भरम रखने के लिए शायद उसमें शिद्दत भी आए, क्योंकि अभी जो बहरीन में अपराइजिंग के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया जा रहा है या जिस तरह सितम किए जा रहे हैं, जो जुल्म किए जा रहे हैं, उसमें मैंने ये भी जो हमारी इतलात हैं कि छोटी उम्र के जो कम उम्र लोग हैं उनको भी डिटेंशन में रखा गया। अभी पिछले दिनों जो है वो कोई 8 जो है लोग जो गिरफ़्तार किए गए, उसमें शायद 3 जो हैं या 4 जो हैं वो छोटे बच्चे थे,
जी।
उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है, या इस तरह के जो जुल्म है, ये जुल्म जो है वो ज्यादा अरसा नहीं रह सकता।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया
कि जो इस वक्त जी
जी बहुत शुक्रिया। मैं फिर आ जाऊँगा, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची पाकिस्तान से पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी आगा मसूद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
आगा साहब, बात हो रही है बहरीन में आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की, और दिलचस्प बात यह है, या यूँ कहा जाए कि मज़ाक़ा खेज़ अमर यह है कि बहरीन में सिक्योरिटी की आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बहरीन में जैसा कि आपने सुना कि बच्चों ख़वातीन तक को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये कैसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है?
देखिए, ये आपको अब्बास साहब याद होगा कि इसी किस्म की सिक्योरिटी काउंसिल गुज़िश्ता महीने अबू धाबी में हुई थी, और उसमें भी बहरीन का जो है मसला ज़ेर बहस आया था। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मजाक है इंसानियत के साथ, और अल-वफ़ाक पार्टी ने तो बाकायदा ऐलान किया है कि जुमे के दिन जो है वो बाकायदा मुजाहरा करेंगे। इस सिलसिले में एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट गार्जियन में भी आई है, और गार्जियन ने लिखा है कि ये एक पीसफुल मूवमेंट है जो इंसानी हकूक के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लोग अपना एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, और जिस 2011 से ये पूरा जो है मूवमेंट, इसके अंदर कोई उनकी तरफ से, यानी जो जो एहतजाज कर रहे हैं, जो अपने हकूक के लिए कर रहे हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सब निहत्ते लोग हैं, पुरमन लोग हैं, और अपना हकूक चाहते हैं। आपको मेरा ख्याल है इस सिलसिले में बड़ा अफसोस हुआ होगा कि अभी मतलब ये कुछ 50 आदमियों को उनमें से 15 साल से लेके 3 साल तक की कैद दी है, जिसमें कि एक खातून भी शामिल है। और जैसे मैंने बताया कि अल-वफ़ाक पार्टी जुमे के दिन ने बहुत बड़ा एहतजाज कर रही है, फिर इस सिक्योरिटी जो जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके साथ एक अजीब व गरीब बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि वो ग्रैंड पिक्स की बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मोटर रेस भी होगी, ताकि लोगों को दे वांट टू सेंड ए मैसेज कि भाई एवरीथिंग इज पीसफुल एंड वी आर हैविंग ए वेरी गुड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो ये भी एक चीज जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इनके ये सारे ढकोसले जिस किस्म के लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं बहरीन के मूवमेंट से, ये उसको तवज्जो नहीं हटा सकेंगे। इस सिक्योरिटी काउंसिल में एक अजीब गरीब बात हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि उसमें ये तय किया गया है कि बिल फर्ज अगर ये जुमे के दिन अगर मजीद ये मूवमेंट में जो लोग आते हैं और अपना एहतजाज करते हैं और पूरी दुनिया को ही बताना चाहते हैं कि ये हमारी मूवमेंट जो है पुरमन है और हम अपने इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब से मजीद जो है वो कुमक यानी मदद जो है वो पहुँचाई जाएगी। और उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये यूई के शेख डम जो हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है सिवाय ये कि इनके पास दौलत है, ये भी तैयार हैं कि हम भी अपने जो है ना जो भी इनके पास वसाइल है फौज की सूरत में वो भी भेजेंगे। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल जो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सिर्फ बहरीन में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को छुपाने के लिए, और वो जो लोग अपने हकूक के लिए कोशिश कर रहे हैं वो उनके लिए, और ये जो रंग दे रहे हैं फिरका वारियत की, मैं समझता हूँ कि ये इतनी इतनी मजाक खेज बात है। उसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग शामिल हैं, अहले सुन्नत शामिल हैं, क्रिश्चियन से शामिल हैं, तो ये सब लोग शामिल हैं, और इनकी सिर्फ बुनियादी, उन्होंने यहाँ तक भी इस बात को तस्लीम किया कि ठीक है अगर ये जो बादशाह थे रहे लेकिन रिफॉर्म्स करें, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस करवाएं, और जो भी पार्टी जीते वो उसको इख्तदार सोचे। आज पैट्रिक ए कॉम का एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने आज एक अखबार में गार्जियन ही के में उसने ये लिखा है कि इस वक्त इस्लामी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो सऊदी अरब है और सऊदी अरब की वजह से जो है इस्लामी दुनिया के अंदर हलचल है। उन्होंने बाकायदा इराक के अंदर भी जुमले लिखे हैं कि इराक के अंदर जिस तरीके से सूरत हाल है, जिस तरीके से निहत्ते लोगों को बमों के जरिए मारा जा रहा है, पूरी रिपोर्ट चाहे वो ये 3 सफ़े की रिपोर्ट है और अभी भी जब मैं आपके पास आ रहा था और ट्रैफिक में फंस गया था तो ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि तशद्दुद के जरिए लोगों को जेल भेज के खौफ हिरास मुबतला करके ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स, मूवमेंट फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन इन बहरेन, उसको तवज्जो हटाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। यही कॉन्फ्रेंस 2 महीने पहले अबूजाबी में हुई थी और उसके अंदर भी मतलब ये कि यही बात डिस्कस हुई थी और मैं नहीं समझता था कि इससे कोई नतीजा निकलेगा। द पीपल ऑफ बहरीन आर यूनाइटेड, दे आर डिफरेंट पीपल, दे विल फाइट फॉर देयर राइट्स और इनको ये हुकूक देने पड़ेंगे।
आगा साहब, अगला सवाल भी आपसे करना चाहूँगा कि ईरान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि इलाके की सिक्योरिटी जो है इलाकाई मुल्कों के ज़रिए ही उसके यकीनी बनाया जा सकता है। अमेरिका के वज़ीर जंग चक हैगल ने कहा है कि उनकी 35,000 फौजें जो इलाके में मौजूद हैं वो आइंदा भी बाकी रहेंगी। क्या बैरूनी क़ुव्वतों के ज़रिए, उनकी फ़ौजी क़ुव्वत के ज़रिए इलाके की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकता है?
मैं समझता हूँ बड़ी मदद बात है। अव्वल तो इनका जो कठपुतली सदर है करज़ई ने तो वो एग्रीमेंट ही नहीं किया अभी तक। वो जो बायलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के तहत ही तो ये रुक सकेंगे ना। तो करज़ई ने तो कहा है कि मैं आइंदा इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद मैं गौर करूंगा कि मुझे ये सिक्योरिटी करनी चाहिए कि नहीं, ये पैक्ट करना चाहिए नहीं। तो इसलिए अमरीका तो बहुत घबराया हुआ है। ये हेगल कराची पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में भी उन्होंने इसी किस्म की धमकी दी कि अगर आपने नेटो सप्लाई का रास्ता नहीं खोला तो हम आपके जो आपको जो एड मिलती है, जो आपको कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम मिलता है, उसको भी हम मौखर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इनकी बौखलाहट है और ये बौखलाहट नज़र भी आ रही है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इनका खुद आदमी जो 10-12 साल से करज़ई ने किस तरह मुसलमानों को मरवाया है, वो आदमी अब इनके खिलाफ हो गया है और वो बायलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के सिलसिले में आप यकीन करें लुई जुर्गा हुआ। लुई जुर्गा ने कहा कि साइन इट, उसने कहा मैं नहीं मानता। फिर इसके बाद ये पार्लियामेंट, इसने कहा मैं नहीं मान। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस शख्स को इन्होंने 12 साल रखा और मुसलमानों का खून इससे कराया करज़ई के जरिए, आज वो बायलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा मैं नहीं समझता कि वहाँ पर ये 10-12 हज़ार या 15 हज़ार या 25 हज़ार फौजें रख सकेंगे। दे विल बी नॉट इन अ पोजीशन टू रिटेन।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। आगा साहब, सदीक़ साहब, आप देखें कि अभी ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने 3-4 अरब मुल्कों का, यानी इसी खलीज फ़ारस के अरब ममालिक जो हैं जिसमें मुत्तहिद अरब अमारात है, कुवैत वगैरह वगैरह, दौरा किया और इस बात की यकीन दहानी कराई और जो जनेवा समझौता हुआ उसके बारे में तफसीलात भी बयान की और ये कहा कि पड़ोसी, जैसा कि एक आम मुहावरा है कि कभी नहीं बदले जा सकते और पड़ोसी एक दूसरे के काम आएंगे, यानी ईरान इन पड़ोसियों का एतमाद बहाल करना चाहता है, उनको यकीन दिलाना चाहता है कि इलाके की सिक्योरिटी हम खुद अपने तहीं बरकरार कर सकते हैं। अमरीका और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने इस तरह का बयान दिया है गोया ईरान अभी भी उनके लिए ख़तरा बना हुआ है और उन्होंने कहा कि हम अपने इत्यादियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बयान है अमेरिका और बरतानिया की तरफ से, ये ईरान की इस कोशिश को सबोताज करने की एक साजिश नहीं है?
बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि ये साजिश है, लेकिन अब ये वहाँ पे उनको ये भी मालूम है कि जब जब अमेरिका कुछ शिकस्त होने लगती है वो तो जितनी तेज़ी से भागता है वो तो सबने देखा हुआ है। तो अब ये हो रहा, 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये कि जो ख़ासतौर पर जो GCC के ममालिक हैं वो और बाकी भी अरब ममालिक, उनको ये ख्याल हो गया कि कभी जब अमेरिका पे दबाव पड़ेगा तो अमेरिका उन लोगों को, जैसे इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में हॉट पोटैटो, गर्म आलू की तरह छोड़ के भाग जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि जो अपने पड़ोसी हैं, और जबकि उनको ईरान से कोई खदशा नहीं है और ईरान ने अभी तक वाहिद मुल्क है कि किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया है, किसी मुल्क पर किसी किस्म का फौजी कार्रवाई नहीं की। तरह तरह के इल्ज़ाम ईरान पर लगते हैं, लेकिन एक चीज़ तो अभी तक साबित नहीं हुई कि ईरान ने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया अभी तक तारीख में, ख़ास तौर पे इस्लामी इनकलाब के बाद। तो देखिए उनका जो जो किरदार रहा है उसको, वो तो सबके सामने है। तो ये इस वजह से, और ईरान के और ख़ास तौर पे इमारात के बहुत अच्छे ताल्लुक थे एक ज़माने में, और ख़ास तौर पे जब यानी जो वहाँ पे इकोनॉमिक और ट्रेड वगैरह था बहुत बहुत ज़्यादा था। फिर ये कि चूँकि आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आ गई, अभी वो ये चाहते हैं कि उस के इमारात के लोग के ईरान से ताल्लुक बेहतर हों और जो जो ट्रेड और उनका जो 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 माली फ़ायदा होता है दोबारा से बहाल हो, और उनको ये भी मालूम है कि एक जो, जैसा कि आपने देखा होगा कि कल शायद इनके जो सलमान खलीफा हैं जो वहाँ के नायब नायब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो भी बहरीन के जो एक बयान दिया है, उन्होंने अमेरिका के बारे में एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्किज़ोफ्रेनिया, उसका मतलब ये होता है कि मुतज़ाद चीज़ों के मुतज़ाद बयान और उनके जो स्टैंड जो है अमेरिका का, वो आगे पीछे हो रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने ये तक कहा। हालांकि उसके बाद अब उसकी तरदीद सुना की गई है कि अब हम बेहतर ये है कि हम रूस की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि रूस ने जिस तरह से अपने एक तरह का जो अभी किरदार अदा किया, ख़ासतौर पे शाम के सिलसिले में, कि शाम पे ईरान के हमले को रोक दिया, और जो वो कहते हैं कि P5+1 का जो जेनेवा का एग्रीमेंट था उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है रूस का, कि इसको कम से कम जो 6 माह का जो एग्रीमेंट हुआ है उस, तो वो ये भी बात कर रहे थे कि हम अमरीका को छोड़ के अब हम रूस की तरफ, या अमेरिका को छोड़ ना छोड़ कर सही, लेकिन हम रूस की तरफ भी अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। अब हालांकि अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। उस मेरे हिसाब से उस ये जो बयान था उसका मकसद ये था कि अमेरिका पे जोर डालना कि देखो तुम लोग जो अगर मुकम्मल तो मुकम्मल तौर पर हमारा साथ नहीं दोगे और ईरान का साथ नहीं छोड़ोगे तो हम भी हम रूस के पास चले जाएंगे। तो ये तो ये मतलब ये कि इन लोगों के तो जैसा कि हम सब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये तो एक मुझे कॉमेडी ड्रामा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जब जैसे जैसे ईरान का एटमी ये जो 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 मसला नहीं कहना चाहिए, जो जो भी जो इन जो जो अभी जो जो उसके ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है वो सॉर्ट आउट होगी, वो और ईरान के जब जब यहाँ का जो ट्रेड वगैरह जो इनकी सैंक्शंस हटेंगी तो आप देखिएगा कि ये जो यही सब ममालिक जो कि अभी ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं सब ईरान की तरफ दोस्ती का।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त अब खत्म हो चाहता है सिद्दीकी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आगा मसूद साहब से माजरत चाहते हैं और मोहतरमा फौजे शाही साहब से भी, साहिबा से। नाज़रीन इजाज़त दीजिए और हमारे जो मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू से जो मतलब ये कि इलाके के आवाम और इलाके की हुकूमतें अगर जज्बे खैर सगाली और नेकनीयती के साथ आगे बढ़ें तो इलाके की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाई जा सकती है, और जो बैरूनी ताकतें हैं उनसे सिवाय तशद्दुद बदमनी और आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला, और अमेरिका हो या बरतानिया, इनकी ख्वाहिश और इनका हदफ, इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी एक मुल्क को दूसरे मुल्कों के लिए ख़तरा बनाकर इलाके के अरब मुल्कों को अपने हथियार और अपना असलहा फरोख करें ताकि उनकी तजारत हमेशा की तरह चमकती रहे। लेकिन जाहिर है कि अब आवाम और दुनिया बेदार हो चुकी है, वो बाशोर हो चुकी है, वो समझती है कि अपना कौन है और पराया कौन है। आज नहीं तो कल ईरान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुनिया के सामने वाज़ह होकर रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।